नमस्कार भारत, तारीख 28 मई दिन सोमवार, मैं हूँ मानसी दाश। 10 राज्यों में लोकसभा और विधानसभा सीटों पर आज होंगे उपचुनाव।
कैराना सीट जीतना बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है, क्योंकि इसी साल मार्च में राज्य की दो सीटों पर उपचुनावों में उसे हार का मुंह देखना पड़ा था।
जानेंगे उड़ीसा के उस चाय वाले के बारे में जिसका जिक्र पीएम मोदी ने किया।
कभी मैं अच्छा पढ़ता था, पढ़ नहीं पाया, गरीबी की वजह से घर का बड़ा होने के नाते जिम्मेदारियां निभाता रहा।
और कार्यक्रम में सुनेंगे पाकिस्तान से वसतुल्ला खान की डायरी।
क्या दोनों रिटायर्ड जासूसों ने कश्मीर या एक दूसरे के खिलाफ गुप्तचर कार्रवाइयों समेत कई राजों से भी पर्दा उठाया है? अगर मैं कह दूं कि नहीं, तो फिर आप काहे को स्पाई क्रॉनिकल खरीदेंगे?
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। आज उपचुनावों में लोकसभा की 4 और विधानसभा की 10 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट भी शामिल है। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के देहांत के बाद खाली हुई इस सीट पर भाजपा की ओर से उनकी बेटी मैदान में है, जिनका मुकाबला राष्ट्रीय लोकदल की तबस्सुम हसन से है, जिन्हें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का समर्थन है। इस उपचुनाव को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी एकता की परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है। कोलंबिया में राष्ट्रपति चुनावों के लिए मतदान समाप्त हो गया है। चुनाव अभियान ने सरकार और फार्क विद्रोहियों के बीच हुए नाजुक शांति समझौते की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता इवान डॉच का कहना है कि समझौता फार्क के प्रति कुछ ज्यादा ही नरम था। वहीं उनके मुख्य प्रतिद्वंदी और पूर्व वामपंथी विद्रोही गुस्तावो पेट्रो समझौते का समर्थन करते हैं और गैर बराबरी और भ्रष्टाचार उनके प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। पहले दौर में किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट जीत हासिल नहीं हुई है और दूसरे दौर का मतदान अब जून में होगा। मौजूदा राष्ट्रपति हुआन मानवेल सांतोस इसी साल अगस्त में पद छोड़ देंगे। उन्हें फार्क के साथ शांति समझौते के लिए साल 2016 में शांति का नोबेल दिया गया था। पूर्व विद्रोही कमांडर और फार्क पार्टी के नेता रोड्रिगो लंदोनियो ने कहा, मैं मानता हूं कि हर बदलाव डर लेकर आता है और उम्मीदें भी, और मुझे लगता है कि कोलंबिया अब शांति और सुलह के रास्ते पर चलना चाहता है। मुझे लगता है कि देश के अधिकतर लोग भी यही चाहते हैं और मैं आश्वस्त हूं कि वो आज मतदान करेंगे। इटली में गठबंधन सरकार बनाने के प्रयास नाकाम हो गए हैं। राष्ट्रपति सर्जियो मैटेरेला ने नए प्रधानमंत्री की ओर से सुझाए गए वित्त मंत्री के नाम को नकार दिया है। दो वामपंथी पार्टी की ओर से चुने गए प्रधानमंत्री ग्यूसेपे कोंटे ने यूरोपीय संघ के प्रखर आलोचक पाओलो सावेना को अपना वित्त मंत्री चुना था। अपने इस फैसले पर वीटो होने के बाद उन्होंने सत्ता वापस कर दी है। इसकी प्रतिक्रिया में फाइव स्टार पार्टी के नेता लुइजी डिमाइयो ने राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की मांग की है। फाइव स्टार पार्टी धुर दक्षिणपंथी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। फाइव स्टार मूवमेंट पार्टी के उपनेता लोरेंजो फ्योरमोंटी ने कहा, गणतंत्र के राष्ट्रपति के प्रोफेसर पाओलो सावेना का नाम को वित्त मंत्री के लिए स्वीकार न करने से हमें झटका लगा है। ऐसे संकेत थे कि राष्ट्रपति इस नाम को लेकर खुश नहीं है। हमें लगा था कि अभी इस बारे में बातचीत और संवाद होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनके बीच संभावित मुलाकात की तैयारियों को लेकर अमेरिकी अधिकारियों का एक दल वार्ता के लिए उत्तर कोरिया पहुंचा है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक वार्ता पनमुनजोम में चल रही है, जहां कल ही उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के शीर्ष नेता मिले थे। दक्षिण कोरिया में अमेरिका के पूर्व राजदूत सुंग किम उत्तर कोरिया के उप विदेश मंत्री चोय सोन हुई से वार्ता कर रहे हैं। माना जा रहा है कि वो ट्रंप और किम जोंग उनके बीच संभावित परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर होने वाले संभावित समझौते को केंद्र में रखकर ही वार्ता कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने 12 जून को सिंगापुर में होने वाली वार्ता को रद्द करने के बाद एक बार फिर से वार्ता होने के संकेत दिए हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का अभिवादन। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com, मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। अभी कर्नाटक विधानसभा चुनाव और उसके बाद सरकार बनाने के लिए चली राजनीतिक उठापटक का दौर खत्म ही हुआ है कि 10 राज्यों की विभिन्न लोकसभा और विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। अब से कुछ ही देर में 4 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हो जाएगा। इन उपचुनावों में किस राजनीतिक पार्टी का क्या कुछ दांव पर लगा है, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर।
उत्तर प्रदेश की कैराना, महाराष्ट्र की पालघर और भंडारा गोंदिया और नागालैंड की इकलौती लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए कुछ ही देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी। इनमें जो सीटें सबसे ज्यादा ध्यान बटोर रही हैं वो हैं उत्तर प्रदेश की कैराना और महाराष्ट्र की पालघर। उत्तर प्रदेश की कैराना सीट जीतना बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है, क्योंकि इसी साल मार्च में राज्य की 2 सीटों पर उपचुनावों में उसे हार का मुंह देखना पड़ा था। गोरखपुर और फूलपुर दोनों ही सीटें बीजेपी की गढ़ मानी जाती थीं। गोरखपुर से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद थे और फूलपुर से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। इनके इस्तीफे के बाद हुए उपचुनावों में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने हाथ मिला लिया था और ये सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गई थीं। अब कैराना पर सबकी निगाहें टिकी हैं। ये सीट बीजेपी के पूर्व सांसद हुकुम सिंह के निधन के बाद खाली हुई है। बीजेपी ने हुकुम सिंह की बेटी मृगंका को टिकट दिया है, जिनका मुकाबला विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार पूर्व सांसद तबस्सुम हसन से है। तबस्सुम राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। यहां से समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार नहीं दिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नूरपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है, जहां बीजेपी के अविनाश सिंह का मुकाबला समाजवादी पार्टी के नईम उल हसन के साथ है। यहां बीएसपी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सियासी साख दांव पर लगी है। महाराष्ट्र में भंडारा गोंदिया सीट से बीजेपी के सांसद रहे नाना पटोले ने दिसंबर 2017 में बीजेपी और लोकसभा सीट छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। वहीं पालघर सीट 30 जनवरी को बीजेपी सांसद चिंतामण वनगा की अचानक हुई मौत से खाली हुई थी। पालघर में तो बीजेपी को झटका लगा है, क्योंकि वनगा का परिवार बीजेपी छोड़कर शिवसेना में शामिल हो गया है। शिवसेना ने यहां दिवंगत बीजेपी सांसद के बेटे श्रीनिवास चिंतामण वनगा को टिकट दिया है, उसी शिवसेना ने जो केंद्र और राज्य सरकारों में बीजेपी की सहयोगी है, मगर उसने चुनाव से पहले बीजेपी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार कर दिया है। यहां शिवसेना के श्रीनिवास चिंतामण वनगा का मुकाबला बीजेपी के गवित राजेंद्र डेडिया से और कांग्रेस के दामोदर बरकू शिंगडा से है। दूसरी तरफ भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर बीजेपी के हेमंत पाटले और एनसीपी के मधुकर कुकड़े के बीच सीधा मुकाबला है। यहां पर कांग्रेस और शिवसेना ने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। इसी तरह से नागालैंड की एकमात्र सीट पर भी चुनाव हो रहे हैं। ये सीट एनडीपीपी के नेफ्यू रियो के इस्तीफे से खाली हुई थी, जो इन दिनों राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक, पंजाब और बिहार में एक एक और झारखंड में 2 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं।
कार्यक्रम में सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश के कैराना, जहां मतदान शुरू होने से पहले की स्थिति का जायजा लेने के लिए हमारे सहयोगी समीरात्मज मिश्र मौजूद हैं। समीरात्मज जी, बताएं, जेठ का महीना है और इस वक्त कैराना में मौसम की गर्मी अधिक है या चुनाव की?
जी मानसी, जाहिर सी बात है गर्मी तो दोनों की यहाँ पे काफी तेज है, महसूस की जा रही है, लेकिन अभी चूंकि सुबह का वक्त है इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है। और मैं इस समय हूँ कैराना लोकसभा सीट के तहत ही एक चुनाव के मतदान केंद्र है, वीवी नगर इंटर कॉलेज रोड पर आर्य समाज मतदान केंद्र जी। तो यहाँ पे हालांकि अभी कुछ देर बाद मतदान शुरू होगा, 7 बजे से, सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक मतदान होना है, लेकिन अभी फिलहाल लोग तो नहीं दिख रहे हैं, अभी मतदान कर्मी दिख रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था चूंकि काफी कड़ी की गई है और सुरक्षाकर्मी यहाँ पे जगह जगह दिख रहे हैं। इस काफी संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है ये, इसलिए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। लगभग 50 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों की तैनाती की गई है, 10 पीएसी की टुकड़ियां तैनात की गई हैं, 1000 के करीब इस लोकसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
जी, एक बात बताएं, वहां फिलहाल कौन से मुद्दे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं?
देखिए, यहाँ पे मुख्य रूप से तो आपको याद होगा कि 2016 में यहाँ से पलायन का इशू उठा था और ये जो हुकुम सिंह, जिनके निधन से ये सीट खाली हुई है, उन्होंने ही इस मुद्दे को उठाया था। इस मुद्दे ने यूं तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित किया था, विधानसभा चुनाव को, लेकिन ये मुद्दा अभी भी किसी न किसी रूप में बना हुआ है। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं, खास तौर पे यहाँ पे गन्ना किसानों की समस्याओं का मुद्दा है, क्योंकि बड़े बड़े पैमाने पे यहाँ के किसान गन्ने की खेती करते हैं, कई मिले हैं, केवल चूंकि ये कैराना लोकसभा क्षेत्र जो है सहारनपुर और शामली दो जिलों में, सहारनपुर की दो विधानसभा सीटें यहाँ आती हैं और शामली की तीन विधानसभा सीटें आती हैं, तो ये पूरा इलाका जो है यहाँ मुख्य रूप से ये मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा, जिनमें गन्ना किसानों का मुद्दा।
जी शुक्रिया समीर आत्मज मिश्र, ये थे जो है कैराना में फिलहाल। और अब कार्यक्रम में आगे चलते हैं उड़ीसा के कटक शहर, जहां की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 61 साल के डी प्रकाश राव का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में की। चाय बेचकर अपना जीवन चलाने वाले प्रकाश राव एक स्कूल भी चलाते हैं, जिस कारण ही मोदी ने उनकी तारीफ की। हमारे सहयोगी सुब्रत कुमार पति ने कटक जाकर प्रकाश राव से मुलाकात की और आपके लिए वहां से ये रिपोर्ट भेजी।
मोदी ने डी प्रकाश राव के काम की सराहना करते हुए उनकी जिंदगी को समाज और देश के लिए प्रेरणादायक बताया।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने कार्यों से बदलाव लाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। दूसरों के सपनों को अपना बना लेने वाले और उन्हें पूरा करने के लिए खुद को खपा देने की कुछ ऐसी ही कहानी ओडिशा के कटक शहर के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले डी प्रकाश राव की। कल ही मुझे डी प्रकाश राव से मिलने का सौभाग्य मिला। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये वेद वाक्य कौन नहीं जानता है, लेकिन उसको जी करके दिखाया है डी प्रकाश राव ने। उनका जीवन समाज और पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है।
उड़ीसा की राजधानी से करीब 30 किलोमीटर दूर बसे शहर कटक में एक सड़क किनारे बसी एक झोपड़पट्टी में 61 साल के डी प्रकाश राव रहते हैं। कभी कॉलेज में कदम ना रखने वाले प्रकाश राव अच्छी हिंदी और अंग्रेजी भी बोल लेते हैं। बीते लगभग 50 सालों से वो चाय बेचते आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए चाय बेचना अपनी कमाई का जरिया नहीं है, बल्कि गरीब बच्चों को पढ़ाई में मदद करने का जरिया है। 18 साल पहले डी प्रकाश राव ने अपनी कमाई से एक स्कूल खोला था, जहाँ उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आज उनके स्कूल में कुल 75 बच्चे पढ़ रहे हैं। प्रकाश राव बताते हैं,
कभी मैं अच्छा पढ़ता था, पढ़ नहीं पाया, गरीबी की वजह से, घर का बड़ा होने के नाते जिम्मेदारियां निभाता रहा, पिताजी को चाय के दुकान में मदद करता रहा, तो मेरे मन में एक अफसोस आया कि अगर मैं ना पढ़ पाया तो मैं इन गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगा। और जो बच्चे रास्ते पे जड़ी गुटियाते हैं, छोटा मोटा चोरी करते हैं, भीख मांगते हैं, हम उम्र के बच्चा होने से नशा करते हैं, ऐसे ही बच्चों को पढ़ाऊं।
हाल में प्रकाश राव ने अपने स्कूल में 6 टीचरों को नियुक्त किया है। बच्चों के लिए दोपहर के खाने में वो दाल और चावल की व्यवस्था करते हैं। प्रकाश राव का स्कूल कटक के भीड़भाड़ वाले बक्सी बाजार इलाके के नजदीक तेलुगु झोपड़पट्टी में है। उनकी बस्ती में रहने वाले अधिकतर लोग शहर में साफ सफाई का काम करते हैं। प्रकाश राव बताते हैं, 25 मई को डी प्रकाश राव के पास प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया। प्रकाश राव बताते हैं,
पहले ही नजर में उन्होंने बोले, राव साहब मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, हाथ हिलाकर बोले अपने अंदाज से, और मैं आया हूँ आपसे मिलूंगा, और खास करके आपके जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं उनसे पहले मुझे मिलवाइए। सोफे पे बैठ गए और मुझे बैठने के लिए उन्होंने मेरे को इंसिस्ट किए, अनुरोध किए। तो मैंने कहा, नहीं सर, मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं आपके पास बैठ सकूँ। सर बोले, नहीं 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 ऐसे मत बोलिए, आप मेरे पास बैठिए। उन्होंने जैसे धूल झाड़ते हैं ना, वैसे सोफों का साफ करके बोले, उनके बाएं तरफ के पास मेरे को बिठाए। तो मुझे लगा कि मैं कोई और दुनिया में हूँ।
प्रकाश राव के पास संपत्ति के नाम पर एक साइकिल ही है, लेकिन उनका कहना है इस वजह से उन्होंने कभी स्कूल बंद करने के बारे में नहीं सोचा। सुब्रत कुमार पति, BBC भुवनेश्वर।
अब एक खबर जम्मू कश्मीर से। CBSE के 12वीं के नतीजों में समा शब्बीर शाह ने जम्मू कश्मीर क्षेत्र से टॉप किया है। समा अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की बेटी हैं। शब्बीर शाह को प्रवर्तन निदेशालय ने साल 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था और वो इन दिनों दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। 97.8% अंक लाने वाली उनकी बेटी ने तिहाड़ के बाहर बैठकर भी तैयारी की थी। उनसे बात की BBC संवाददाता रियाज मसरूर ने।
बहुत बड़ा अचीवमेंट है. नॉर्मली गुड मार्क्स एक्सपेक्ट किए होते हैं बट ऐसे स्टेट टॉपर ये तो बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए.
लेकिन जैसा कि है कि आपके जो पिता हैं शबीर अहमद शाह वो पिछले एक साल से बंद हैं, परिस्थितियों से कैसे आप जूझे और न सिर्फ पास किया बल्कि टॉप भी किया?
काफी टफ टाइम था. एक तो कलेक्टिव ट्रॉमा होता ही है एज अ कश्मीरी यहाँ पे जो हालात है ऑल द टाइम, बट उसके अलावा एक पर्सनल ट्रॉमा भी मुझे था एक, तो उसकी वजह से काफी स्टार्टिंग में सब कुछ डिस्टर्बिंग रहा. जैसे हम त्योहार जाते थे, जैसे हम बाबा को मिल नहीं पाते थे, बाबा से एक साल से मैं मिली नहीं हूँ बाबा से ठीक से, तो उस सब की वजह से वो दिमाग में ऑल द टाइम वो नेगेटिव थॉट्स आते ही थे जरूर. बट फिर अंदर से एक चीज थी कि मैं उनको प्राउड फील कराऊं, और उन्होंने जब वो इतने ब्रेव हैं और इतने सालों से लड़ रहे हैं, तो मैं इस चीज को एक नेगेटिव पॉइंट की तरह नहीं लूं.
ये जो परीक्षा है इसकी तैयारी के दौरान आपने कभी कोशिश की अपने पिता से मिलने की?
मैं जो टाइम होता है प्रिपरेशन टाइम, मैं उस टाइम में दिल्ली गई थी बाबा से मिलने. वहाँ पे अब हमें त्योहार में तो फुल डे वहाँ जाता है क्योंकि हमें वहाँ 5 आवर्स वेट करना होता है और फिर 10 मिनट मिलने देते हैं, तो मैं जब हमें 2 आवर्स लगते थे तो मैं गाड़ी में पढ़ती थी. उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचते थे तो मैं उनको कहती थी अब मुझे अंदर 5 घंटे ऐसे ही बैठना है, मुझे किताब अंदर लेने दो, बट मुझे अलाउ नहीं करते थे. फिर वो टाइम जब तक वो वेटिंग रूम में जाने का टाइम आता था तब तक मैं त्योहार में बाहर पढ़ती थी गेट के पास.
ये बताएं कि आप आगे करना क्या चाहती हैं?
मैं लॉ करना चाहती हूँ क्योंकि हमारी स्टेट ने स्पेशली मेरी फैमिली ने बहुत इनजस्टिस देखा है थ्रू कोर्ट्स. स्पेशली पिछले एक साल मैं काफ़ी टाइम कोर्ट हेयरिंग्स में भी गई हूँ. वहाँ पे जो भी मैंने देखा मतलब प्योर इनजस्टिस, मतलब जो मैंने जुडिशरी के बारे में इतने सालों से पढ़ा था, जब मैं अपने पर्सनल केस में मैंने देखा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जुडिशरी में ही जाऊँगी, मैं लॉ पढ़ूंगी और मैं इंश्योर करूँगी कि मतलब मेरी स्टेट या दुनिया में कोई सफ़र नहीं करे जैसे हमने किया.
हाल में पाकिस्तान के पूर्व ISI प्रमुख असद दुरानी ने भारत के पूर्व रॉ प्रमुख अमरजीत सिंह दुलत के साथ एक किताब लिखी. किताब का नाम है दी स्पाई क्रॉनिकल्स रॉ ISI एंड द इल्यूशंस ऑफ पीस. इस किताब को लेकर पाकिस्तान में बहस छिड़ गई है. इसी मुद्दे पर है इस सप्ताह की वसतुल्ला खान की डायरी.
आज GHQ पिंडी में भूतपूर्व स्पाई मास्टर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी हाईकमान को ये बताएंगे कि उन्होंने भारतीय गुप्तचर संस्था रॉ के भूतपूर्व बॉस दौलत के साथ जो बातें की और जो अभी अभी स्पाई क्रॉनिकल नाम की पुस्तक में छपी हैं. क्या इस प्रोजेक्ट में हाथ डालने से पहले हाईकमान से इजाज़त ली गई? क्या इससे सेना के आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हुआ? इसमें कई बातें ऐसी क्यों हैं जिनका वास्तविकता से लेना देना नहीं? इससे मुझे याद आया कि स्पाई क्रॉनिकल में एक जगह जनरल असद दुरानी ने हंसते हुए कहा कि अगर हम दोनों उपन्यास भी लिख दें तब भी लोग यकीन नहीं करेंगे. पाकिस्तानी सेनेट के भूतपूर्व अध्यक्ष रजा रब्बानी ने सवाल उठाया कि ऐसी बातें कोई सिविलियन करता तो अब तक देशद्रोही होने का ठप्पा लग चुका होता. मुंबई अटैक के बारे में अपने ही बयान के डसे नवाज शरीफ ने कहा कि जैसे मेरे एक जुमले को पकड़ के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई गई, अब जनरल असद दुरानी के लिए भी बुलाओ ना. स्पाई क्रॉनिकल फिलहाल पाकिस्तान में उपलब्ध नहीं. एक मित्र ने मुझे PDF कॉपी ईमेल की. इसमें एक मज़ेदार वाकया असद दुरानी ने यह बताया कि जब जर्मनी में मिलिट्री अटैची के तौर पर मेरी पोस्टिंग होना थी तो एक एजेंसी के 2 लोग मेरे कैरेक्टर के बारे में पता करने लाहौर मेरे ससुराल पहुंचे. घर वाले कहीं गए हुए थे. एजेंसी वालों ने गली के चौकीदार से पूछा, इस घर में जो लोग रहते हैं वो कैसे हैं? चौकीदार ने कहा, अच्छे शरीफ लोग हैं साहब. यूं चौकीदार के बयान से मेरी जर्मनी की पोस्टिंग क्लियर हो गई. एक बार जनरल असद दुरानी का बेटा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे किसी जर्मन कंपनी के कंसल्टेंट के तौर पर कोचीन गया. उसे किसी ने नहीं बताया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट वाले को पुलिस रिपोर्टिंग कराना पड़ती है और जिस पोर्ट से वो भारत में दाखिल हुआ उसी पोर्ट से वापस जाना होता है. चुनाचे वो कोचीन से मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गया और उसे रोक लिया गया. जनरल साहब ने दौलत को फ़ोन किया. दौलत साहब ने मुंबई में अपने कनेक्शन इस्तेमाल किए और जनरल साहब के बेटे को दूसरे दिन की फ़्लाइट से इज्जत से रवाना कर दिया गया. जब दौलत साहब ने मदद करने वाले रॉ के कर्मचारी का शुक्रिया अदा किया तो उसने कहा, शुक्रिया किस बात का सर, आखिर को जनरल साहब भी कुलीग ही हैं, यानी जासूस जासूस भाई भाई. शायद इसीलिए 2003 में रॉ ने ISI को जनरल मुशर्रफ पे एक घातक हमले की टिप दी یوں جنرل مشرف اس حملے میں محفوظ رہے. اب ایسی باتیں لکھنے سے اگر نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہے تو بھلے ہوتا رہے، مگر فائدہ یہ ہے کہ کتاب خوب بکے گی، اور اگر اس کتاب پہ پابندی بھی لگ جائے تو سبحان اللہ، تب تو چھاپنے والے کی پانچوں انگلیاں گھی میں. کیا دونوں ریٹائرڈ جاسوسوں نے کشمیر یا ایک دوسرے کے خلاف گپت چر کاروائیوں سمیت کئی رازوں سے بھی پردہ اٹھایا ہے؟ اگر میں کہہ دوں کہ نہیں تو پھر آپ کاہے کو سپائی کرونیکل خریدیں گے، اس لیے فی الحال میں نہیں تو بالکل نہیں کہہ رہا.
یہ تھی پاکستان سے وسط اللہ خان کی ڈائری. گھڑی میں اس وقت بج گئے ہیں صبح کے 6:39 اور کارکرم میں ہم آگے بڑھیں اس سے پہلے جانتے ہیں کہ آج دلی سے چھپنے والے اخباروں میں کیا کچھ خاص ہے. دل نواز پاشا اخباروں کے ساتھ اسٹوڈیو پہنچ گئے ہیں، جانتے ہیں ان سے کیا ہے آج کی سرخیاں.
جی مانسی، آج کے اخباروں میں پردھان منتری نریندر مودی جی کا ہاتھ اور شین واٹسن کا بلہ لہرا رہا ہے. کل پردھان منتری نریندر مودی نے دلی سے میرٹھ کے بیچ جو ہائی وے پرستاوت ہے اس کے 9 کلومیٹر کا ایریا جو بن کے تیار ہو گیا اس کا ادگھاٹن کیا. اس کے علاوہ ایسٹرن پیریفیرل ہائی وے کا ادگھاٹن کیا، اور جنستا میں لگژری کار میں سوار نریندر مودی اور ان کے چاروں اور ارد گرد گارڈ اور ہاتھ لہراتی بھیڑ کی تصویر پرکاشت ہے. اخبار اسے آج ہو رہے اپ چناؤں سے جوڑ کر بھی دیکھ رہے ہیں. نو بھارت ٹائمس لکھتا ہے ایکسپریس وے پر چناوی ریس، مودی کے نشانے پر کانگریس، اور لگ بھگ ایسا ہی شیرشک آج کے انڈین ایکسپریس نے لگایا ہے، اپ چناؤ سندھیا نریندر مودی نے کانگریس پر نشانہ سادھا. یہ تصویر اور خبر سبھی اخباروں کے پہلے پنے پر ہے.
جی
کل گرمی بہت تھی اور آج بھی شاید گرمی بہت پڑے، اور مدھیہ پردیش کی گرمی کا اندازہ دیا ہے نئی دنیا اخبار نے. مورینا میں پارا 47.6 ڈگری اور دیواس میں 47، دلی والے 45 سے بہت پریشان ہیں. اور اب بات تھوڑی پیٹرول کی قیمتوں کی، آج جو جنتا کو لگ رہی
ہے اور ڈیزل کا دام جو ہے وہ بھی جو ہے لگاتار چڑھتا جا رہا ہے.
دی ٹائمز آف انڈیا لکھ رہا ہے کہ سرکار تیل کے دام کم نہیں کرے گی، بلکہ جو کروڈ آئل ہے کچا تیل اس کے دام کم ہونے کا انتظار کرے گی. یہ آج کا دی ٹائمز آف انڈیا بتا رہا ہے. بہت سے ایسے لوگ،
مطلب یہ کہ فی الحال مہنگائی جو ہے وہ برقرار رہے گی.
جی بالکل. اور نیرو مودی کی سمپتی جبت کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، یہ آج کا ہندوستان اخبار بتا رہا ہے. اتراکھنڈ میں لگی آگ، جو جنگل کی آگ لگی ہے اس کی خبر جنستا نے پرکاشت کی ہے. بتا رہے ہیں داونل کے لیے ذمہ دار پیرول سے اب ہوگا اورجا اتپادن. ہم نے بھی کل اس بارے میں رپورٹ پرسارت کی تھی. اتراکھنڈ کے جنگلوں میں بھیانک آگ لگی ہے، لوگ پریشان ہیں اور وہاں پہ جو استھانیہ پرشاسن ہے وہ اس سے نبٹنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ایک خبر کا ذکر کریں گے، انڈین ایکسپریس میں پرکاشت بہار سے جڑی ہوئی خبر ہے. 2 سال پہلے بہار میں شراب بندی لاگو کی گئی تھی، تب مکھیہ منتری نتیش کمار نے کہا تھا کہ اس کا فائدہ جو سماج کے پچھڑے ورگ ہیں انہیں سب سے زیادہ ہوگا، لیکن اب دی انڈین ایکسپریس کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ انیہ پچھڑا ورگ اور جو وہاں کا غریب طبقہ ہے ایس سی ایس ٹی ورگ، اسی کے سب سے زیادہ لوگ اس قانون کے چلتے جیل میں ہیں. یہ انڈین ایکسپریس کی وشیش رپورٹ بتا رہی ہے. اور ذکر کریں گے آسام کے پورو ڈی جی پی کا، مکیش سہائے، جو گوہاٹی کے سونارام ہائر سیکنڈری اسکول میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں،
گنت پڑھا رہے ہیں.
جی بالکل. اور یہ خبر بھی آج کے انڈین ایکسپریس نے.
انہوں نے اپنی نوکری سے سیوا نوتی لینے کے بعد جو ہے اسکول میں پڑھائی کرنا شروع کیا ہے، کرانا شروع کیا ہے بچوں کو، اور یہ چھوٹا سا اسکول ہے، کوئی بہت بڑا اسکول نہیں ہے. جی دھنیواد دل نواز اخباروں کی سمیکشا کے لیے. اور اب سنتے ہیں ساپتاہک کاریہ کھیل اور کھلاڑی.
کھیل اور کھلاڑی کارکرم کے ساتھ میں ہوں آدیش کمار گپت.
دیٹ از 2018 دی نیم آن دی ٹرافی چنئی سپر کنگز.
آخر کار آئی پی ایل 11 کے فائنل کا سماپن کل چنئی سپر کنگز کی جیت کے ساتھ ہوا. یہ ان کی تیسری خطابی جیت رہی. مہندر سنگھ دھونی کی کپتانی میں چنئی نے سن رائزرز حیدرآباد کو 8 وکٹ سے بات دی. اس کے سامنے جیت کے لیے 189 رنوں کا لکشیہ تھا جو اس نے شین واٹسن کے طوفانی شتک کی مدد سے 18.3 اوور میں حاصل کر لیا. شین واٹسن نے ناباد 117 رن بنائے، جبکہ अपना शतक तो उन्होंने केवल 51 गेंदों पर 7 चौके और 8 छक्कों की मदद से पूरा किया। उनके अलावा सुरेश रैना ने 32 रन बनाए। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर केन विलियमसन के 47 और यूसुफ पठान के नाबाद 45 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 178 रन बनाए। चेन्नई ने जिस अंदाज में इस आईपीएल का खिताब अपने नाम किया तो ऐसा लगा जैसे ये उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। और अब समीक्षा। पहले एबी डी विलियर्स थकान से गए और क्या अब भारत के कप्तान विराट कोहली का हाल भी उन जैसा ही होगा?
14 आईपीएल के मैचेस तो लीग में खेलते हैं, फिर उसके बाद प्लेऑफ मैचेस, फिर फाइनल, इतना ट्रैवलिंग, इतनी थकान, फिर उसके एकदम बाद आप टेस्ट मैच, फिर आप जाके इंग्लैंड में टूर करना चाहते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या इतने क्रिकेट खिला के एक्सपेक्ट करते हैं कि एक रोबोट की तरह खिलाड़ी लोग खेले, वो नहीं हो पाएगा।
ये विश्लेषण है क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली का, जो उन्होंने इस सवाल के बाद किया कि क्या विराट कोहली की गर्दन में चोट का कारण लगातार क्रिकेट खेलना है, और उसके जवाब में सुझाव के साथ साथ चिंता भी उभर आई। अब इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और कि पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका के बेहतरीन बल्लेबाज एबी डी विलियर्स ने बेहद ईमानदारी से ये कहते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया कि अब उनका शरीर थक गया है, अपने बैट को खूंटी पर टांगने से पहले वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए आईपीएल खेल रहे थे। और उसके बाद बेंगलोर के ही कप्तान विराट कोहली ने भी ये कहकर कि वो अब चोट के कारण काउंटी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ठीक वैसे ही मिसाल पेश की जैसे एक विकेट गिरने पर दूसरा बल्लेबाज भी अगली गेंद पर आउट होकर कहे कि तू चल मैं आया। वैसे विराट कोहली तो खुद फिटनेस की एक मिसाल रहे हैं, लेकिन अगर खिलाड़ी हर समय पंजों के बल रहे तो फिर तो ऐसा ही होगा। एक और क्रिकेट समीक्षक प्रदीप मैगजीन कहते हैं,
तीन फॉर्मेट, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, T20, इतना अगर कोई क्रिकेट खेलेगा, चाहे वो सुपर फिट ही क्यों ना हो, सुपर मैन क्यों ना हो, उसका इंजरी या मेंटली फिटीग से बचा रहना मिरेकल होगा। डिविलियर्स की रिटायरमेंट, आईपीएल में, टेस्ट क्रिकेट में बड़े टॉप फॉर्म में लग रहे थे, तो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स को सोचना है कि अगर उन्होंने टॉप क्रिकेटर्स को प्रोटेक्ट करना है तो किस तरह से क्रिकेट डिस्ट्रीब्यूट हो, उसका कैलेंडर डिस्ट्रीब्यूट।
डिविलियर्स और विराट जैसे खिलाड़ी क्रिकेट में रोमांच लेकर आते हैं, और अगर वही देश के लिए ना खेलें तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? विजय लोकपल्ली कहते हैं,
नेक इंजरी है तो ठीक टाइम पे अगर तकलीफ ठीक हो जाए तो भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विराट के बगैर इंग्लैंड टूर सोचना तो फिर 50-50 की सीरीज हो जाएगी, पर विराट रहेंगे तो पलड़ा बिल्कुल भारत की तरफ झुका रहेगा टेस्ट सीरीज जीतने का।
आजकल खिलाड़ी से लेकर राजनेता तक सब फिट होने का संदेश देते दिखाई देते हैं। विराट कोहली का दंड लगाते वीडियो सभी ने देखा, मगर उनकी सच्चाई तो सामने आ ही गई है। एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ सेहत, हिट और फिट रहने के लिए इनके बीच तालमेल खिलाड़ी को खुद ही बनाना होगा, वरना बीसीसीआई की नजर में पैसा ही सब कुछ है, खिलाड़ी तो आते जाते रहते हैं। उधर कल से साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन शुरू हुआ, जहां रोला गैरा की लाल बजरी पर पुरुष एकल वर्ग में ग्रिगोर दिमित्रो और महिला एकल वर्ग में यूक्रेन की इलीना स्वेतोलिना और चेक गणराज्य की बारबोरा स्ट्राइकोवा ने जीत के साथ शुरुआत की। उनके अलावा जापान के केई निशिकोरी, फ्रांस के गेल मॉनफिल्स ने भी अगले दौर में जगह बनाई, लेकिन नौवीं वरीयता हासिल अमरीका की वीनस विलियम्स को चीन की वांग यांग ने बाहर किया। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
कार्यक्रम में आपसे विदा लें उससे पहले एक बार फिर सुनिए समाचार दिलनवाज पाशा से।
आज हो रहे उपचुनावों में लोकसभा की 4 और विधानसभा की 10 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट भी शामिल है। कोलंबिया में राष्ट्रपति चुनावों के लिए मतदान समाप्त हो गए हैं। चुनाव अभियान ने सरकार और फार्क विद्रोहियों के बीच हुए नाजुक शांति समझौते की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। इटली में गठबंधन सरकार बनाने के प्रयास फिर नाकाम हो गए हैं। राष्ट्रपति सर्जियो मैटरोला ने नए प्रधानमंत्री की ओर से सुझाए गए वित्त मंत्री के नाम को नकार दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनके बीच संभावित मुलाकात की तैयारियों को लेकर अमरीकी अधिकारियों का एक दल वार्ता के लिए उत्तर कोरिया पहुंचा है। चीन के अधिकारियों का कहना है कि अमरीका ने दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में विवादित कोरल रीफ इलाके के पास से अपने युद्धक जहाज गुजारकर चीन की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन किया है। मिस्र के राष्ट्रपति के एक प्रखर आलोचक को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाजिम अब्दुल अजीज राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी के 2014 चुनाव अभियान के युवा मामलों के प्रमुख थे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन किया दीपक जसरोटिया ने और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया मीना कोटवाल ने। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम के 7:30 बजे दिन की दूसरी सभा दिन भर में। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए bbchindi.com से और मानसी दास को दीजिए अनुमति। नमस्कार।